तीसरा स्कंद, 15वां और 16वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे सनत कुमार जी का नारायण जी के द्वारपालक जय और विजय को श्राप देना और उनका दिति के गर्भ में आना। इसके साथ ही नारायण जी का सनत कुमार का सम्मान करना और सनत कुमार का वैकुंठ नाथ की स्तुति करना। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कहा कि जिस समय कश्यप मुनि का वीर्य दिति के गर्भ में पड़ा तो उसी समय जय विजय के तेज से, जो कि दिति के गर्भ में आए थे, देवताओं का मन ऐसे घबराने लगा कि उनके मन में जैसे कोई डर उत्पन्न होकर उन्हें लगने लगा कि कोई बलवान शत्रु उन्हें मारने के लिए चला आ रहा है। जब बहुत अधिक विकलता के कारण देवताओं का बल दिन पर दिन घटने लगा तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, महाराज आप तो जगत करता हैं, सभी जीवों के दुख और सुख का जो भी हाल होने वाला है उसे आप पहले से ही जानते हैं। इन दिनों हम लोगों का मन बहुत ही घबराया हुआ रहता है और डर से भरा रहता है, आप ही इसका भेद बतला दीजिए। तो देवताओं का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, नारायण जी के द्वारपालक जय विजय जन्म लेने के लिए दिति के गर्भ में आ चुके हैं, इसी कारण उनके तप और तेज से तुम्हारा बल हीन हो गया है और तुम लोगों का ऐसा हाल हुआ है। तो यह बात सुनकर देवताओं ने कहा, महाराज अभी तो उनके गर्भ में आने से हम लोगों की ऐसी दशा हुई, जन्म लेने से क्या हाल होगा हमारा। तो हे महाप्रभु, वैकुंठवासी लोग तो जन्म और मरण से रहित रहते हैं, तो उन्होंने वैकुंठ का सुख छोड़कर दैत्य के शरीर में जन्म लेना क्यों अंगीकार किया। इसका हाल आप हमें वर्णन करिए कि जिससे हमारा संदेह छूट जाए। तो ब्रह्मा जी बोले, यह हाल इस प्रकार है कि एक दिन लक्ष्मी जी बड़े ही प्रेम से बहुत सारी दासियों के रहते हुए भी नारायण जी के शरीर और भुजा में अपने हाथों से चंदन लगा रही थी, पर ब्रह्म परमेश्वर वैकुंठ में जहाँ सभी स्थान सोने के बहुत सुंदर बने हैं एक रत्नों के सिंहासन पर बैठे थे। तो उस समय जगत माता ने ऐसा विचार किया कि श्याम सुंदर की भुजाएं देखने में तो बहुत ही सुंदर और कोमल मालूम होती हैं, लेकिन मैंने आज तक इन भुजाओं का बल नहीं देखा, पता नहीं इनमें कुछ पुरुषार्थ है या नहीं। तो नारायण जी अंतर्यामी उनके मन का हाल जान गए। उन्हें अपना पराक्रम दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा विचार किया कि जय विजय के अलावा जो हमारे द्वारपाल हैं दूसरा कोई भी एक क्षण के लिए भी हमारी भुजाओं का बल सह नहीं सकता जो हमारे साथ लड़ सके, तो इसीलिए दैत्य योनि में जो कि हमारे शत्रु हैं इन दोनों का जन्म दे देते हैं और उनसे लड़ाई करके अपने भुजाओं का पराक्रम लक्ष्मी को दिखलाते हैं। तो ऐसा विचार करके वैकुंठ नाथ ने जय विजय का ज्ञान बदल दिया, तो इसी कारण उन्हें 3 बार दैत्य के तन में जन्म लेना पड़ा। उनके जन्म लेने का कारण इस प्रकार बना कि एक दिन सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई जिन्हें वैकुंठ में जाने की मनाही नहीं थी, नारायण जी का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए। उसी दिन परमेश्वर की इच्छा से, जिसका हाल ऊपर बताया जा चुका है, द्वारपालक जय विजय चतुर्भुजी स्वरूप ने 7वीं देवढ़ी पर सनत कुमार इत्यादि ऋषियों को अंदर जाने से मना करते हुए नारायण जी से पूछे बिना भीतर जाना उचित नहीं है ऐसा बोला। तो यह नई बात सुनते ही सनत कुमार जी ने क्रोध में आकर कहा, मूर्ख, हमें वैकुंठ नाथ ने भीतर आने के लिए कभी भी मना नहीं किया होगा, क्योंकि वो तो सदैव ब्राह्मणों का आदर सम्मान दूसरों से भी अधिक करते हैं, यह सब तो तुम्हारी ही दुष्टता है जो तुम हमें रोक रहे हो। वैकुंठ में काम, क्रोध, मोह और लोभ व्याप नहीं सकता, लेकिन तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया है, तो इसीलिए हम परमेश्वर से ऐसा चाहते हैं कि तुम दोनों ही मर्त्यलोक में, जहाँ पर जीवों के लिए काम, क्रोध, मोह और लोभ भरा रहता है, दैत्य योनि में तुम जन्म पाओ। यह श्राप सुनते ही जय विजय का गर्व जाता रहा और वो दौड़कर सनत कुमार जी के चरणों में गिर पड़े। रोते हुए हाथ जोड़कर विनय करने लगे, महाराज, हमने तो ऐसा जाना है कि अब हमारे बुरे दिन आ गए हैं, इसीलिए हमसे ऐसा अधर्म हुआ, तो हमारा अपराध क्षमा करके आप हमें केवल इतनी अवधि का प्रमाण कर दीजिए कि दैत्य योनि से कब हमारा उद्धार होगा। उनके दीन वचन सुनकर सनत कुमार बोले, मेरा शाप किसी भी तरह से फिर नहीं सकता और ना मालूम क्यों मेरे स्वभाव में क्रोध ने प्रवेश किया, सो तुम दोनों भाइयों को 3 बार माता के पेट से जन्म लेकर दैत्य होना ही पड़ेगा और 3ों बार त्रिलोकीनाथ सगुण अवतार लेकर जब तुम्हें अपने हाथों से मारेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा और फिर से तुम वैकुंठ में आओगे। तो जिस समय सनत कुमार जी जय विजय से इस प्रकार कह रहे थे, तो उसी समय वैकुंठनाथ यह हाल सुनकर सनत कुमार जी का सम्मान करने के लिए नंगे पांव लक्ष्मी जी समेत बाहर को निकल आए और सनत कुमार जी के चरणों पर गिरकर वो इस प्रकार बोले कि इन द्वारपालों से बड़ा ही अपराध हुआ जो उन्होंने आपको रोका। मेरी लक्ष्मी को तो तुमसे कुछ भी पर्दा नहीं है, अधर्म की जगह पर स्त्री को पर्दा करना चाहिए। तो वैकुंठनाथ की ऐसी अधीनता देखकर सनत कुमार जी ने मन में ऐसे सोचा कि देखो कैसी विनम्रता है नारायण जी में। जिस समय पर ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा, महादेव इत्यादि देवता और नारद मुनि जैसे ऋषिश्वर और ज्ञानी लोग अपने हृदय में रखने से भव सागर पार उतरकर कृतार्थ होते हैं, वही आदि पुरुष भगवान, तीनों लोकों के मालिक और उत्पन्न करने वाले, जिनका भजन और स्मरण करने से हमें इतना सम्मान मिलता है, वो स्वयं हमारे चरणों पर गिरकर कितनी अधीनता कर रहे हैं, और क्यों ना हो। इसीलिए तो ये अपना नाम ब्रह्मण्य देव रखकर बड़े ही प्रेम से ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, नहीं तो इनका क्या प्रयोजन था जो मुझे जैसे गरीब ब्राह्मण पर इतनी दया करते। यह सब कृपा वो इसलिए करते हैं ताकि सांसारिक लोग यह हाल सुनकर ब्राह्मणों की सेवा और सम्मान करें। तो ऐसा विचार करके सनत कुमार जी त्रिलोकीनाथ से हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हे दीनानाथ, हमने तो क्रोधवश आपके सेवकों को श्राप दे दिया, सो आप दया करके मेरा अपराध क्षमा करिए, अपने चरणों का ध्यान मुझे दीजिए कि जिसमें आपके चरण कमलों का ध्यान मन में रखने से हमें फिर कभी भी क्रोध ना आए और कोई भी जीव हमारे हाथों से दुख न पा सके। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर, सनत कुमार जी के मुख से इस प्रकार का हाल सुनकर परब्रह्म परमेश्वर बोले, हे महाराज, मेरे द्वारपालक जय विजय को अपराध करने के बदले जो भी आपने दंड दिया बहुत अच्छा किया। मैं उस श्राप से बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि इनके दंड पाने से ब्राह्मणों और ऋषियों का कभी कोई अपमान नहीं करेगा। आपके स्वभाव में क्रोध नहीं था, यह श्राप तो मेरी इच्छा से ही इनको हुआ है, आप किसी बात की चिंता ना करें। मैं इसीलिए आपकी विनती करता हूँ कि ये दोनों मेरे द्वारपालक थे, इनके अपराध करने का अपयश मेरे ही ऊपर है, इसीलिए मेरा अपराध आप क्षमा करें, क्योंकि संसार में किसी का नौकर कोई भी भला या बुरा काम करे तो उसके मालिक का नाम जाता है। जो लोग साधु, महात्मा और ब्राह्मण का अपमान करते हैं उन्हें तो नरक में जाना पड़ता है और नरक के लोगों को भी ऐसे मनुष्यों की संगति अच्छी नहीं लगती। आप लोग ब्राह्मण, ऋषिश्वर और मेरे इष्ट देवता हैं, आपके चरणों की धूली का तो ऐसा प्रताप है कि लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव होने पर भी मेरे पास दिन रात बनी रहती हैं। ब्राह्मण को तो मैं अपने तन और लक्ष्मी जी और वैकुंठ से भी प्यारा और अच्छा जानता हूँ। संसार में हम ब्राह्मण मुख और अग्नि मुख से ही तो भोजन करते हैं, पर जैसा ब्राह्मण को अच्छे पदार्थ खिलाने से प्रसन्न होता हूँ, वैसे ही अग्नि में होम करने से प्रसन्न नहीं होता हूँ। ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराने से मेरा पेट तीनों लोकों के जीवों समेत भर जाता है, इसीलिए गृहस्थ को चाहिए कि वो ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराए। मैं ब्राह्मणों के चरणों की धूली लक्ष्मी जी समेत अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ब्राह्मण का अपराध क्षमा करने वाले लोग मुझे बहुत प्यारे मालूम होते हैं। वैकुंठनाथ का ऐसा वचन सुनकर सनत सनकादिक बोले, हे महाप्रभु, आपकी लीला और इच्छा तो हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, तो हम लोगों की क्या सामर्थ्य जो हम जान सके। आप तो 14 भुवनों के जीवों के मालिक हैं। जैसी आपकी इच्छा होती है वैसा ही ब्रह्मा इत्यादि देवता करते हैं। आपसे कोई दूसरा बड़ा नहीं है, उनको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए जिनके हृदय में आपकी भक्ति और वैकुंठ जाने की चाहना रहती है। जो भी लोग हरि भक्तों का सत्संग और उनकी सेवा करते हैं उन्हें वैकुंठ पहुंचने में संदेह नहीं रहता। आपके वैकुंठ में काम क्रोध मोह और लोभ का प्रवेश नहीं होता। वहां पर तो बहुत से कल्प वृक्ष लगे हैं, 12 महीने उन वृक्षों में ऐसे ऐसे फल और फूल लगे रहते हैं कि जिनको देखने से मन प्रसन्न होकर शोक और दुख से छूट जाता है। बहुत ही अच्छे अच्छे पक्षी, हंस और मोर इत्यादि वहाँ पर रहते हैं, जो अनेक प्रकार की मीठी मीठी बोलियाँ बोलते हैं। सोने के बहुत बड़े बड़े मकान रत्न इत्यादियों से जड़े हुए बने हैं। वहाँ पर तो पहुँचने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी तरह के सुख और पदार्थ उन्हें वहाँ मिलते हैं। ऐसा कहकर सनकादिक नारायण और लक्ष्मी जी के स्वरूप का ध्यान करके प्रेम में ऐसे डूब गए कि उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। नारायण जी का स्वरूप इस प्रकार का था, श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुज, मोहिनी मूर्ति, किरीट मुकुट साजे, उनके अंग अंग पर आभूषण विराजे, कौस्तुभ मणि और वैजयंती माला पहने, पीतांबर की कछनी काढ़े, रेशमी उपरना ओढ़े, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए, शंख और चक्र के दो हाथ ऊपर को उठाए और पद्म और गदा के दो हाथ नीचे को लटकाए, घुंघराले बाल, मंद मंद हास्य, ताप हारिनी चितवन, और उनके बाईं ओर लक्ष्मी जी पीतांबर पहने, कानों में कर्णफूल, हाथों में कंगन और कड़ा, पैरों में पाजेब और कड़ा, गले में मोती और रत्नों के हार, सिर में चूड़ामणि, नाक में नथ पहने विराजमान है। लक्ष्मी नारायण जी एक जड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हैं। तो जब उनके ऐसे स्वरूप का ध्यान सनकादिक ने किया तब वैकुंठनाथ बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। यह वचन सुनते ही सनकादिक हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम तो आपसे यही वरदान मांगते हैं कि आपके चरणों की भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। आपकी कथा और लीला सुनने में सर्वदा इच्छा लगी रहे। तो जब नारायण जी ने इच्छा पूर्वक वरदान दिया तब सनकादिक वैकुंठनाथ को दंडवत करके उनसे विदा होकर चले गए। जय श्री कृष्ण।